I was thinking, actually I got the idea from yesterday, or last few days when you're getting the class translated into Chinese. I thought it will be a good idea to translate it into Hindi also. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Narayanam Namaskritya. Naran Chaiva Narottamam. Devim Sarasvatim Vyasam Tato Jaya Mudirai Nashtu Praishu Abhadreshu Nittam Bhagavata Sevaya Bhagavati Uttama Shloke Bhaktir Bhavati Naishtiki. Srimad Bhagavatam, second canto, first chapter, the first step in God realization, text 21.
Hare Krishna. Srimad Bhagavatam, skand dusra, adhyay pehla. Shlok Sankhya, Ish Anubhuti Ka Shubharam, Shlok Sankhya 21.
Very good. Yasyam Sandharyamanayam Yogino Bhakti Lakshanaha Ashu Sampadate Yoga Ashrayam Bhadram Ikshataha Yasyam Sandharyamanayam Yasyam Sandharyamanayam Yogino Bhakti Lakshanaha Yogino Bhakti Lakshanaha Ashu Sampadate Yoga Ashu Sampadate Yoga Ashrayam Bhadramikshataha Ashrayam Bhadramikshataha Yasyam Sandharyamanayam Yogino Bhakti Lakshanaha Ashu Sampadate Yoga Ashrayam Bhadramikshataha Yasyam, by such systematic remembrance.
Aise suniyojit smaran se. Aise suniyojit smaran se.
Aise suniyojit smaran se. Sandharyamanayam. And thus being fixed in the habit of.
और इस तरह के अभ्यास में स्थिर होकर
और इस तरह अभ्यास में स्थिर होकर योगिनः द मिस्टिक्स
योगी जन
भक्ति लक्षणः बीइंग प्रैक्टिस्ड टू द डिवोशनल सिस्टम
भक्ति योग का अभ्यास करके
आशु वेरी सून
शीघ्र
संपद्धते अटेन सक्सेस
सफलता प्राप्त करता है
योगः कनेक्शन बाय डिवोशन,
भक्तिमयी सेवा से संबंध,
आश्रयम अंडर द शेल्टर ऑफ,
शरण के अंतर्गत,
भद्रम द ऑल गुड,
कल्याण,
ईक्षतः विच सीइंग दैट,
देखते हुए.
Translation by His Divine Grace, Srila Prabhupada. O King, by this system of remembrance and by being fixed in the habit of seeing the all-good personal conception of the Lord, one can very soon attain devotional service to the Lord under His direct shelter.
अनुवाद श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा. हे राजा, स्मरण की इस पद्धति से तथा भगवान के कल्याणप्रद साकार स्वरूप का दर्शन करने के अभ्यास में स्थिर होने से मनुष्य भगवान के प्रत्यक्ष आश्रय के अंतर्गत उनकी भक्ति को शीघ्र ही प्राप्त कर सकता है.
परपोर्ट बाय श्रील प्रभुपाद. सक्सेस ऑफ मिस्टिक परफॉर्मेंसेस is achieved only by the help of the devotional attitude. Pantheism, or the system of feeling the presence of Almighty everywhere, is a sort of training of the mind to become accustomed to the devotional conception, and it is this devotional attitude of the mystic that makes possible the successful termination of such mystic attempts. One is not, however, elevated to such a successful status without the tinge of mixture in devotional service. The devotional atmosphere created by pantheistic vision develops into devotional service in later days, and that is the only habit for the impersonal, that's the only benefit for the impersonalist. It is confirmed in the Bhagavad Gita 12:5 that the impersonal way of self-realization is more troublesome because it reaches the goal in an indirect way. Although the impersonalist always becomes obsessed with the personal feature of the Lord after a long time.
तात्पर्य, योग की सिद्धियां भक्तिमय प्रवृत्ति के द्वारा ही सफल हो सकती हैं. सर्वेश्वरवाद, जो कि सर्वशक्तिमान की सर्वत्र उपस्थिति को अनुभव करने की पद्धति है, एक प्रकार का मन का प्रशिक्षण है, जिससे भक्तिमय धारणा के प्रति अभ्यस्त हुआ जाता है, और योगी को इसी भक्तिमय प्रवृत्ति से ऐसे योगिक प्रयासों की सफल परिणति होती है. किंतु भक्तिमय के रंचमात्र मिश्रण के बिना मनुष्य को ऐसा सफल पद प्राप्त नहीं होता. सर्वेश्वरवादी दृष्टि से जो भक्तिमय वातावरण उत्पन्न होता है, वह आगे चलकर भक्ति में विकसित हो जाता है, और निर्विशेषवादी के लिए यही एकमात्र लाभ है. भगवद गीता में अध्याय 12 श्लोक संख्या 5 में यह पुष्टि की गई है कि आत्म साक्षात्कार का निर्विशेष मार्ग अधिक कष्टप्रद है, क्योंकि यह घूमकर लक्ष्य तक पहुंचता है. यद्यपि निर्विशेषवादी भी काफी समय बाद भगवान के साकार रूप में रूप के प्रति आकृष्ट होता है.
सो साधना इज ऑलवेज डिफिकल्ट.
तो साधना अत्यंत कठिन है.
बट आफ्टर व्हाट वन आफ्टर साधना व्हाट वन अचीव्स इज वेरी प्लीजिंग.
लेकिन कठिन साधना के उपरांत जिस वस्तु की उपलब्धि होती है वह बहुत ही शुभ है.
जस्ट लाइक वन स्टडीज थ्रू आउट द ईयर एंड आफ्टर द स्टडीज ही सिट्स फॉर द एग्जाम्स एंड देन व्हेन ही पासेस द एग्जाम्स देन ही गेट्स अ जॉब एंड दैट वे ही अर्न्स मनी.
जैसे कि कोई विद्यार्थी परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए कठिन परिश्रम करता है, लेकिन जब वह परीक्षा में उत्तीर्ण हो जाता है तो उसके चलते उसे एक अच्छी नौकरी प्राप्त होती है.
एंड देन ही गेट्स अ लॉट ऑफ मनी.
और उसके उपरांत उसे बहुत धन की भी उपलब्धि होती है.
एंड इट्स नाइस टू हैव अ लॉट ऑफ मनी.
और धन होना एक अच्छी बात है.
सो हियर सिद्धि इज और गोल इज टू मेक मनी, बट द साधना इज टू प्रिपेयर फॉर अर्निंग मनी.
तो यहां पर सिद्धि जो है वह धन प्राप्त करना है, लेकिन जो साधना है वो उसके लिए पढ़ाई के द्वारा परिश्रम करना है.
Everybody, before the class, switch off your mobile phones or keep them in silent mode. Just don't, you know, you all are devotees. How many times I have to tell you? Or another example can be given. It is so difficult to cook, but after the prasadam is cooked and offered to Krishna, and then when you eat it, you enjoy.
दूसरा उदाहरण दिया जा सकता है कि भोग बनाना बहुत दुष्कर कार्य है, लेकिन अगर हम वह करते हैं और भगवान को भोग लगाते हैं, उसके बाद हम ग्रहण करते हैं, तो वो बहुत ही अच्छा लगता है.
सो हियर साधना इज कुकिंग एंड सिद्धि इज ईटिंग.
तो यहां पर साधना है वो भोजन पकाना है, और जो सिद्धि है वो प्रसाद के रूप में उसे ग्रहण करना है.
सो सिमिलरली ऑन द स्पिरिचुअल प्लेटफॉर्म सिद्धि इज डिवोशनल सर्विस. And sadhana is all these processes of yoga, tapasya, and so forth.
इसी प्रकार से आध्यात्मिक भक्तिमय मार्ग में जो सिद्धि है वह भक्ति करना है, और उसकी साधना है.
साधना है योग, योगा
वो योग का अभ्यास
है. योग का अभ्यास और तपस्या का,
योग अभ्यास और तपस्या साधना है.
सो ये जो तपस्या और योग है ये बहुत कठिन है, ये इसमें बहुत तकलीफ होता है. आई एम सॉरी. सो द प्रैक्टिस ऑफ योगा एंड परफॉर्मेंस ऑफ ऑस्टेरिटी इज वेरी वेरी डिफिकल्ट.
तो यह योग अभ्यास और तपस्या करना एक जीव के लिए बहुत ही दुष्कर कार्य है.
एंड देन आफ्टर दैट व्हेन यू गेट इनटू द प्लेटफॉर्म ऑफ डिवोशनल सर्विस दैट इज वेरी जॉयफुल, वेरी एक्सटैटिक.
लेकिन कोई एक जीव जब भक्ति भगवान की प्रेम में भक्ति का अभ्यास करता है तो वो अत्यंत आनंददायक है.
सो दैट इज द नॉर्मल प्रोसेस, फर्स्ट साधना एंड देन सिद्धि.
तो साधारणतया यही प्रक्रिया होती है, पहले साधना होती है फिर सिद्धि की उपलब्धि होती है.
बट श्री चैतन्य महाप्रभु गेव अस द प्रोसेस वेयर देयर इज नो साधना, इट्स ओनली सिद्धि.
लेकिन चैतन्य महाप्रभु की कृपा से हमें एक ऐसे प्रक्रिया मिली है जिसमें साधना तो कुछ नहीं करना पड़ता, केवल सिद्धि ही मिलती है.
सो द प्रैक्टिस ऑफ डिवोशनल सर्विस इज साधना, एंड अल्टीमेटली ऑल्सो वी आर गेटिंग The joy of experiencing Krishna Prem.
तो जो साधना है भक्ति मार्ग में वो भगवान की भक्ति ही है, और जो हमें सिद्धि का लाभ हो रहा है वो भगवान की भक्ति में आनंद की उपलब्धि है.
So this is the inconceivable good fortune for this age of Kali.
तो कलयुग के जीवों के लिए यह भगवान की कृपा के रूप में अचिंत्य जो हमें कृपा मिली है भगवान का, यह हमारा हम बहुत भाग्यशाली हैं.
अनफॉर्चुनेटली व्हेन वी गेट समथिंग वी डोंट रिकॉग्नाइज इट्स वैल्यू.
अभाग्यपूर्णवश हमें अगर कोई भी वस्तु प्राप्त होती है तो हम उसके मूल्य की गणना नहीं कर पाते.
स्पेशली व्हेन वी गेट इट वेरी इजीली,
अगर हमें वह चीज बहुत आसानी से मिल जाए तो.
सो दैट इज आवर प्रॉब्लम.
तो यही हमारी मुश्किल है.
वी हैव रिसीव कृष्ण कॉन्शियसनेस, कृष्ण भक्ति सो इजिली बाय द मर्सी ऑफ चैतन्य महाप्रभु दैट वी आर नॉट एक्चुअली रिकग्नाइजिंग इट्स एक्चुअल मेरिट.
कि जो हमें कृष्ण प्रेम प्रेमा भक्ति चैतन्य महाप्रभु की कृपा से इतनी आसानी से उपलब्ध है, हम उसके मूल्य की गणना वास्तविक रूप में नहीं कर पा रहे हैं और उसे तुच्छ समझ रहे हैं.
बट इन अदर एजेस पीपल आर जस्ट प्रेइंग टू कृष्णा दैट प्लीज लेट मी टेक बर्थ इन द एज ऑफ कली.
और दूसरे युगों में जो जीव हैं वो भगवान से कृष्ण से प्रार्थना करते हैं कि हे भगवान हमें कलयुग में जन्म लेने का अवसर दीजिए.
इवन द डेमी गॉड्स प्रे दैट दे कैन टेक बर्थ इन द एज ऑफ कली इन द लैंड ऑफ भारतवर्ष एज ह्यूमन बीइंग्स.
तो देवतागण भी ये प्रार्थना करते हैं कि वो कलयुग में मानव रूप में जन्म लें,
भारत भूमि
में जन्म लें.
सो वाई? बिकॉज इट इज सो इजिली अवेलेबल.
वह इसके लिए क्योंकि कलयुग में यह इतनी आसानी से सभी के लिए उपलब्ध है.
ये कृष्ण भक्ति था, ये दिस कृष्ण भक्ति इज सो इजिली अवेलेबल.
ये कृष्ण भक्ति इतनी आसानी से उपलब्ध है.
कैन यू इमेजिन इफ यू वॉन्टेड टू मेक स्पिरिचुअल एडवांसमेंट इन अदर एजेस वॉट यू हैड टू डू?
क्या आप इस बात का चिंतन कर सकते हैं कि अन्य युगों में हमें कृष्ण भक्ति प्राप्त करने के लिए क्या क्या कठिन कार्य करने पड़ते हैं?
से इफ यू आर बोर्न इन सत्ययुग,
जैसे कि आपका अगर सतयुग में जन्म हुआ है,
इफ यू वॉन्टेड टू मेक स्पिरिचुअल एडवांसमेंट वॉट यू डू?
अगर आप आध्यात्मिक उन्नति करना चाहते हैं तो आपको क्या करना चाहिए?
हाँ, यस प्रदीप, वो तो समझ गए क्या करना होगा, कैसे? बस. और कहां जाके करना होगा? घर में बैठ के? हाँ. सो इफ यू वॉन्टेड टू मेक स्पिरिचुअल एडवांसमेंट इन द सत्ययुग, वॉट यू हैव टू डू? यू हैव टू लीव होम.
तो सतयुग में अगर हमें आध्यात्मिक उन्नति करनी है तो हमें क्या करना होगा? हमें घर का त्याग करना होगा.
एंड नॉट लीव होम एंड ज्वाइन इस्कॉन टेम्पल.
घर छोड़कर हमें इस्कॉन संस्था ज्वाइन नहीं करना होगा.
यू हैव टू गो टू द हिमालयस.
आपको हिमालय जाना होगा.
और यू हैव टू गो टू अ डेंस फॉरेस्ट इन झारखंड.
और आपको झारखंड के घने जंगल में जाना होगा.
और यू हैव टू गो अंडर वाटर.
या फिर आपको जल के अंदर जाना होगा.
एंड जमुना.
जमुना के अंदर.
एंड देयर व्हाट यू हैव टू डू? यू हैव टू प्रैक्टिकली स्टॉप ईटिंग, स्टॉप ड्रिंकिंग, स्टॉप ब्रीदिंग.
और वहां पर आपको जाकर क्या करना होगा? वास्तविक रूप में आपको खाना पीना सोना सब कुछ त्यागना होगा.
And practically withdraw your consciousness out of your body. Be free from body consciousness altogether.
और आपको अपनी चेतना को शारीरिक जो भाव है उससे बाहर निकालना होगा.
देहात्म बुद्धि
से बाहर निकालना होगा.
Because as long as you have देहात्म बुद्धि, you can't become situated. As long as you are in body consciousness, you can't come to the spiritual consciousness.
क्योंकि जब तक आपकी बुद्धि देहात्मिक है उसके चलते आप आध्यात्मिक स्तर पर स्थित नहीं हो सकते.
सो हाउ मेनी ऑफ यू आर रेडी फॉर दैट?
तो कितने लोग यहां पर उसके लिए तैयार हैं?
हाथ उठाइए. एंड हाउ मेनी ऑफ यू आर नॉट रेडी फॉर दैट? दो हाथ उठाइए. एंड से हरे कृष्णा,
हरे कृष्णा,
हरे कृष्णा,
हरे
कृष्णा,
कृष्णा
कृष्णा,
हरे हरे,
हरे राम,
हरे
राम,
राम
राम,
हरे
हरे,
हरे.
सो वॉट यू वुड नॉट गेट बाय डूइंग दैट, यू विल गेट दैट जस्ट बाय चैंटिंग द होली नेम ऑफ द लॉर्ड.
तो जो इतना कठिन तपस्या आदि करने के उपरांत हमें प्राप्त नहीं हो सकता था दूसरे युगों में, वह इस कलयुग में आसानी से प्राप्त हो सकता है.
So is it a very simple process?
तो क्या यह आसान प्रक्रिया नहीं है?
How many of you think it's a very simple process?
कितने लोग ऐसा सोचते हैं बहुत आसान प्रक्रिया है?
And those who think that is really a simple process, raise both of your hands.
जो कि ऐसा सोचते हैं वास्तविक रूप से साधारण है तो दोनों हाथ खड़ा कीजिए.
दो हाथ उठाइए. And say हरे कृष्णा,
हरे कृष्णा,
हरे कृष्णा,
हरे कृष्णा,
कृष्णा कृष्णा,
कृष्णा कृष्णा,
हरे हरे,
हरे हरे,
हरे राम,
हरे राम,
हरे राम,
हरे राम,
राम राम
राम राम
हरे हरे. सो दैट इज व्हाट प्रभुपाद इज टेलिंग इन दिस परपोर्ट ऑफ दिस वर्स.
तो इस तात्पर्य में प्रभुपाद इसी बात का उल्लेख कर रहे हैं.
Prabhupada is saying that the yoga process is necessary to feel the presence of the Lord everywhere.
तो प्रभुपाद जी यह बात बता रहे हैं कि योग की पद्धति अत्यंत अनिवार्य है अगर हमें भगवान की अनुभूति करनी है तो.
But first of all, it is very difficult and it is very, very time-consuming.
तो सबसे पहले हमें यह जानना होगा कि पहला तो ये बहुत ही कठिन है और दूसरा इसमें समय भी बहुत अधिक लगता है.
एंड वन कैन एक्चुअली कम टू वन कैन फील द प्रेजेंस ऑफ द लॉर्ड ओनली व्हेन ही इज सिचुएटेड इन स्पिरिचुअल आइडेंटिटी.
तो मानव भगवान की अनुभूति तभी कर सकता है जब वह आध्यात्मिक स्तर पर स्थित हो.
And when he develops his relationship with the Lord, then he can develop his love for him, which will ultimately culminate into loving devotional service.
तो जब वो भगवान से अपना संबंध स्थापित करता है उसके चलते ही वह भगवान से संबंध स्थापित कर सकता है जिसके उपरांत वह भगवान की प्रेममय भक्ति कर सकता है.
But in this age we can see that that is not necessary because Sri Chaitanya Mahaprabhu came and gave this process of devotion directly.
लेकिन हम इस युग में देखते हैं वह इतना आवश्यक नहीं है क्योंकि स्वयं चैतन्य महाप्रभु इस कलयुग में आए और उन्होंने यह भक्ति प्रेम भक्ति का मार्ग हमें दिखलाया.
इट इज अनदर वे वी कैन लुक एट इट इज दैट टू गेट ए PhD इज वेरी डिफिकल्ट.
दूसरे शब्दों में अगर हम समझें तो PhD डिग्री को प्राप्त करना बहुत कठिन है.
टू गेट ए PhD व्हाट यू हैव टू डू फर्स्ट हाउ मेनी 12 इयर्स इन स्कूल.
तो PhD डिग्री प्राप्त करने के लिए हमें पहले तो 12 वर्ष स्कूल में बिताने पड़ते हैं.
देन अनदर 4 to 6 इयर्स इन द यूनिवर्सिटी.
फिर 4 से 6 वर्ष हमें यूनिवर्सिटी में बिताने पड़ते हैं.
एंड देन आफ्टर द यूनिवर्सिटी देन यू हैव टू रिसर्च एंड राइट द थीसिस.
उसके उपरांत यूनिवर्सिटी में 4-6 वर्ष बिताने के बाद हमें यह एक थीसिस कंप्लीट करना पड़ता है.
रिसर्च और थीसिस
करना पड़ता है.
एंड देन द यूनिवर्सिटी गिव्स यू इफ दे सी दैट यू आर क्वालिफाइड दे विल गिव यू द PhD.
तो जब ये यूनिवर्सिटी यह देखते हैं कि आप इसमें दक्ष हो चुके हैं तभी आपको यह PhD डिग्री वो प्रदान करते हैं.
बट इफ सम यूनिवर्सिटी सेज दैट ओके एनीबॉडी कैन कम एंड गेट द PhD डिग्री.
अगर ऐसा कोई यूनिवर्सिटी बोले कि कोई भी आकर PhD डिग्री प्राप्त कर सकता है.
एंड यू डोंट हैव टू डू एनीथिंग. यू डोंट हैव टू स्टडी इन द कॉलेज. यू डोंट जस्ट कम एंड यू हैव टू सिंपली चैंट हरे कृष्ण एंड यू विल गेट अ PhD.
तो अगर कोई ऐसा यूनिवर्सिटी में बोले कि आपको कुछ पढ़ाई नहीं करना है कुछ नहीं करना है केवल आप हरे कृष्ण का जप कीजिए और आपको PhD डिग्री मिल जाएगी.
नाउ समथिंग लाइक दैट हैज हैपेंड इन दिस एज.
तो कलयुग में कुछ ऐसा ही हो रहा है.
एक्चुअली दिस PhD वॉज जस्ट एन एग्जाम्पल बट द पॉइंट इज दैट बाय चैंटिंग हरे कृष्ण what we can achieve is completely inconceivable.
तो यह PhD तो मात्र एक उदाहरण था. कहने का अर्थ यह है कि जो हम कृष्ण भावनामृत में जिसकी हमें उपलब्धि हो रही है वह अभूतपूर्व रूप से अचिंत्य है.
एंड इट इज बिकॉज ऑफ द अरेंजमेंट ऑफ द सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड हेड.
वह भगवान पूर्ण परमेश्वर भगवान के कृपा के कारण हमें प्राप्त हो रहा है.
बिकॉज ही एक्चुअली मेड दिस अरेंजमेंट.
क्योंकि वह स्वयं ही उन्होंने ऐसी व्यवस्था की है.
एंड व्हाट इज द अरेंजमेंट. द अरेंजमेंट इज यू चैंट हरे कृष्ण एंड यू विल गेट आउट ऑफ दिस मटीरियल नेचर एंड कम बैक टू द स्पिरिचुअल।
तो वो क्या व्यवस्था है? वह व्यवस्था यह है कि आप हरे कृष्ण का जप कीजिए और आप इस भौतिक देहात्मिक बुद्धि से बाहर आ जाएंगे और भगवत भक्ति में स्थित हो जाएंगे।
Our problem is we do not really know what it means to get out of the material nature and go back to Godhead.
हमारी मुश्किल यह है कि हम इस बात को नहीं समझ पाते कि इस भौतिक संसार को छोड़ना क्या है और भगवत भक्ति प्राप्त करना क्या है।
We don't actually understand how miserable our material existence is.
हम इस बात को नहीं समझ पाते कि हमारे इस भौतिक संसार में कितनी विषम परिस्थिति में हम लोग हैं।
वी कांट इमेजिन हाउ वी आर सफरिंग।
हम इस बात की गणना नहीं कर सकते कि कितने रूप से हम लोग कष्ट भोग रहे हैं।
वी कांट इमेजिन बिकॉज वी आर कंडीशन्ड। कंडीशन मीन्स we just adjust whatever situation we are in.
तो हम इस बात की तो गणना इसके लिए नहीं कर सकते क्योंकि हम लोग conditioned, हम लोग बद्ध हैं और इसी के कारण हम भगवान की अनुभूति नहीं कर सकते।
हाँ, ओके। जय श्री श्री राधा मदन मोहन की जय। जय श्री श्री कृष्ण बलराम की जय। जय श्री श्री गौर निताय की जय। सो कंडीशन एक्चुअली मीन्स टू बिकम बिविल्डर्ड बाय द इल्यूजरी एनर्जी ऑफ द लॉर्ड।
तो बद्धता, भौतिक बद्धता का अर्थ है कि भगवान की बाहिरांगिना शक्ति के द्वारा प्रभावित हो जाना,
माया शक्ति के द्वारा
प्रभावित हो जाना।
एंड बीइंग बिविल्डर्ड बाय द इल्यूजरी एनर्जी ऑफ द लॉर्ड वी कंसीडर द मिजरेबल कंडीशन टू बी अ डिजायरेबल स्टेट ऑफ एक्सिस्टेंस।
तो इस भगवान की माया शक्ति के प्रभाव के चलते हम लोग कितना हम कष्ट भोग रहे हैं इस संसार में उसकी अनुभूति नहीं कर पाते।
सो That is the unfortunate state of our existence.
तो यही हमारा दुर्भाग्य है इस भौतिक संसार में।
Say one is burning in a fire and he thinks that it's all right to be in that condition.
अगर कोई भीषण अग्नि में जल रहा है तो उसके बाद वह यह सोचता है कि यह तो ठीक है, इसमें कोई बुरी बात नहीं है।
एंड द इल्यूजरी कंडीशन इज लाइक दैट वी बिकम यूज टू इट। एक्चुअली बाय नेचर्स अरेंजमेंट व्हाट एवर डिफिकल्ट कंडीशन दैट वी मे बी इन दैट वी लर्न टू एडजस्ट।
तो भगवान की माया शक्ति के चलते हमें उसकी आदत पड़ जाती है। तो माया शक्ति का यही प्रभाव है कि हम इस भौतिक संसार में इसी दुष्कर जो जीवन है इसमें हम लोग कुछ फेरबदल या बदलाव करके सुखमय जीवन व्यतीत करने का प्रयास करते हैं।
लाइक फॉर एग्जाम्पल फॉर अस इफ वी आर ड्राउंड इन द ओशन, ड्राउंड इन द वॉटर विल सफर।
उदाहरण के रूप में अगर हम एक जल में डूब रहे हैं और डूबे हुए हैं तो हमें अत्यंत कष्ट होगा।
बट वॉट हैपन्स वी गेट ड्राउंड इन द वॉटर वी सफर एंड देन सफरिंग वी आवर बॉडी बिकम्स द बॉडी ऑफ ए फिश। देन यू सो इट्स नाइस टू बी इन द वॉटर।
तो इसके चलते क्या होता है कि जब हम पानी के अंदर रहते हैं तो पानी के अंदर रहने के लंबे समय के रहने के उपरांत हमें उसकी आदत पड़ जाती है और फिर हमें एक मछली का शरीर प्राप्त हो जाता है और फिर मछली का शरीर प्राप्त होने के उपरांत हम सोचते हैं कि पानी के अंदर, जल के अंदर रहना तो बहुत आनंददायक है।
एंड वी से वेयर इज वाटर।
हम लोग फिर इसके उपरांत यह बोलते हैं कि पानी कहां है।
एंड देन से somebody इज पुट इन टू बर्निंग फायर and he is burning, he is suffering, but then gradually he get used to that situation एंड देन ही फील्स ओह इट्स सो नाइस टू बी इन द फायर.
जिस प्रकार अगर कोई भीषण अग्नि में डाल दिया जाए तो पहले तो उसे अत्यंत कष्ट होगा, लेकिन कुछ समय के उपरांत वह कष्ट का उसको अनुभूति नहीं होगी और वह बोलेगा कि वाह अग्नि में रहना तो अत्यंत सुखमय है.
और somebody is put into a pool of stool.
अगर किसी को एक बहुत विशालकाय विष्ठा के स्त्रोत में डाल दिया जाए
then how initially he will suffer, he'll find it so miserable, but then gradually he will like to, he will get used to that situation.
तो प्रारंभ में उसके लिए वह विष्ठा में रहना बहुत दुष्कर है, लेकिन कुछ समय के उपरांत वह उसके लिए एक ठीक ठाक सी चीज बन जाते हैं.
एंड देन ही विल गेट द बॉडी ऑफ अ पिग एंड ही विल वंडर वेयर इज टूल.
और उसके उपरांत उसे एक सुअर का शरीर दे दिया जाता है और उसके उपरांत वह बोलता है कि विष्ठा कहां है.
दैट इज व्हाट एक्चुअली हैपेंस इन द हेलिश कंडीशन इन द नरक इन हेल आफ्टर डेथ वन सफर्स. एक्चुअली द सटल बॉडी इज सब्जेक्टेड टू दैट सफरिंग and then gradually he gets used to it, and when he gets used to it then he is put into the womb of an appropriate body, appropriate mother's womb, and he comes out with a body and he adjusts himself in that condition.
तो विभिन्न प्रकार के नरकों में भी एक जीव को एक ऐसी ही ताड़ना दी जाती है और जब उसे ऐसी ताड़ना दी जाती है तो उसके सूक्ष्म शरीर को इस प्रकार के कष्ट भोगने की आदत पड़ जाती है और उसके उपरांत उसे किसी सुअर की योनि में डाल दिया जाता है जहां वह इसमें आनंद प्राप्ति करता है.
इस स्थिति को
वह सहन करने की शक्ति प्राप्त कर लेता
और उसको ही चाहते हैं
और उसी को वह
उसी स्थिति को
वो चाहता है.
सो दिस इज आवर कंडीशन इन दिस मेटीरियल नेचर. वी एंड व्हेन यू लुक एट इट फ्रॉम अ प्रॉपर पर्सपेक्टिव वी कैन सी हाउ मिजरेबल इट इज, हाउ टेरेबल इट इज, हाउ मच वी आर सफरिंग.
तो यही हमारी भौतिक संसार में हमारी स्थिति है. अगर हम इसका सही रूप से दर्शन करें तो हमें पता चलेगा कि इस भौतिक संसार में हमारी स्थिति कितनी दुखमय है.
कैन यू इमेजिन अ ट्री इफ यू हैड टू स्टैंड लाइक अ ट्री इन द मिडल ऑफ अ फॉरेस्ट, विंड, रेन, स्टॉर्म, कोल्ड and heat, you know, and you are just standing there just tolerating all that. Like if one is put into that condition, how will you feel?
तो क्या हम इस बात का चिंतन कर सकते हैं कि एक घने जंग के बीच में अगर हम एक वृक्ष के रूप में स्थित हों तो वृक्ष को जोरदार वायु या तो बारिश या बिजली, कड़ाके की ठंड और गर्मी, इन सभी को सहना पड़ता है. तो हम अपनी इस परिस्थिति में अपने आप को देख सकते हैं क्या?
सो वी हैव टू एक्चुअली रिकॉग्नाइज आवर एक्चुअल सिचुएशन इन दिस मटीरियल नेचर.
तो हमको वास्तविक रूप से इस दर्शन का ध्यान करना चाहिए कि हमारे इस भौतिक संसार में क्या स्थिति है.
नाउ वी मे थिंक ओ द ट्री इज सफरिंग सो मच, बट यू गो एंड आस्क द ट्री विल से आई एम फाइन.
तो हम इस बात का दर्शन कर सकते हैं कि वास्तविक रूप से जो वृक्ष है उसको अत्यंत कष्ट हो रहा है, लेकिन अगर उसी वृक्ष से प्रश्न किया जाए कि तुम कैसे हो तो वही वृक्ष यह उत्तर देगा कि अरे मैं तो बहुत सुखी हूं.
और लाइक द कंडीशन ऑफ अ पिग यू कैन सी इट्स सो मिजरेबल.
और जैसे सुअर की स्थिति भी कितनी दुखमय, कितनी कष्टप्रद है.
Once Indra was cursed to become a pig.
एक बार इंद्रदेव को एक ऐसा अभिशाप मिला था जहां पर उन्हें सुअर की योनि में जन्म लेना पड़ा.
And then after this term of the curse was over, the demigods came to this pig and said, "Look, now you come back to the heavenly planet and become our king."
तो जब उनका यह शाप का समय बीत गया तो जो देवतागण थे वह उनके इंद्रदेव जिन्होंने सुअर का रूप लिया हुआ था उनके पास आए और बोले कि आप आइए वापस इंद्रदेव, आप तो स्वर्ग के राजा हैं।
बट इंद्र एज अ पिग व्हाट डिड ही से, हाउ कैन आई लीव नाउ, आई हैव माय वाइफ, आई हैव माय चिल्ड्रन, आई हैव माय ग्रैंड चिल्ड्रन एंड लुक व्हाट अ ब्यूटीफुल हाउस आई बिल्ट, प्लीज फॉरगिव मी, आई कांट गो नाउ।
तो इंद्रदेव ने क्या उत्तर दिया? इंद्रदेव ने यह कहा कि मैं कैसे आ सकता हूं, मेरे तो पत्नी है, मेरा परिवार है, बच्चे हैं, मेरे नाती हैं, पोते हैं, इतना अच्छा परिवार है, तो यह सब छोड़ के मैं कैसे आ सकता हूं, मुझे क्षमा कीजिए, मैं तो स्वर्ग नहीं आ सकता।
सो दिस इज द मीनिंग ऑफ बीइंग कंडीशन्ड।
तो बद्धता का यही अर्थ है,
वी डोंट, वेयर एवर व्हाट एवर सिचुएशन वी आर इन, वी थिंक दैट इज सो वंडरफुल एंड वी डू नॉट वॉन्ट टू change that situation।
जिस भी परिस्थिति में हम हो, हमें वह अत्यंत सुखमय और आनंददायक लगती है और हम उसे किसी भी प्रकार से उसमें कुछ भी बदलाव नहीं चाहते।
But the intelligent thing is to recognize the miserable condition that we are in this material nature and becoming free from that material conditioning and go back to the spiritual sky।
तो बुद्धिमता इसी बात में है कि हम अपनी जो भौतिक संसार में स्थिति है उसको पहचाने और इस भौतिक देहात्मिक वृत्ति से, देहात्मिक बुद्धि से अपने को मुक्त करके भगवत धाम में जाएं।
Our problem is we do not understand how joyful it is in the spiritual sky।
हमारी मुश्किल यह भी है कि हम को इस बात का पता नहीं है कि आध्यात्मिक संसार में कितना सुख मिल सकता है।
That's why it has been advised time and time again to hear about Krishna's pastimes in spiritual sky।
तो इसी के कारण यह शास्त्रों में अनेकों बारों बार यह उपदेश दिया जाता है कि हमें भगवान की जो भगवत धाम में लीलाएं चल रही हैं उसका कथन श्रवण करना चाहिए।
And when we hear Krishna's pastimes, then we develop the understanding how wonderful it is।
तो जब हम भगवान कृष्ण की लीलाओं का चिंतन श्रवण करते हैं तो हमें इस बात की अनुभूति हो सकती है कि वह कितना आनंददायक है।
Then we become absorbed in that those activities are joyful activities of Krishna।
तो तब हम भगवान की जो सुंदर लीलाएं हैं, आनंददायक लीलाएं हैं, उपने उसमें अपने मन को मग्न कर सकते हैं।
देन वी डेवलप द डिजायर टू बी इन दैट पास्ट टाइम्स।
तब हम भगवान की लीला में भाग लेने की इच्छा को उत्पन्न कर सकते हैं।
एंड दिस इज हाउ वी बिकम क्वालिफाइड टू गो बैक टू द स्पिरिचुअल स्काई।
इसी के चलते हमको भगवत धाम जाने की
क्वालिफाइड
योग्यता प्राप्त हो सकती है।
एंड दिस इज कॉल्ड लोलम ग्रीड। वी मस्ट डेवलप द ग्रीड टू गो बैक टू कृष्णस पास्ट टाइम्स।
और इसी योग्यता को लॉल्यम यानी के लोभ कहा जाता है। लोभ का अर्थ है कि हमें यह लोभ होना चाहिए कि किस प्रकार मैं भगवत धाम जा पाऊंगा,
किस प्रकार, हाउ कैन वी एंटर इनटू क्रिश्नास पास्ट टाइम,
मैं किस प्रकार भगवान की लीलाओं में शामिल हो पाऊंगा,
हाउ कैन आई बिकम कॉन्स्टेंटली अब्सॉर्ब्ड इन क्रिश्नास पास्ट टाइम,
मैं भगवान की लीलाओं में किस प्रकार सदैव चिंतन कर पाऊंगा,
हाउ कैन आई रेंडर सम सर्विस टू कृष्णा इन दोज In that situation,
तो उस परिस्थिति में मैं भगवान कृष्ण की किस प्रकार सेवा कर पाऊंगा?
In this way, we become qualified to go back to Godhead।
इसी योग्यता के चलते, इसी के चलते हमें भगवत धाम जाने का योग्यता प्राप्त होता है।
So that's why we have to listen to Bhagavatam classes attentively।
इसी के कारण हमको भगवत जो कक्षा है उसमें बहुत ध्यानपूर्वक श्रवण करना चाहिए।
वी हैव टू लिसन टू भगवत गीता क्लासेस।
हमें भगवत गीता कक्षा का भी श्रवण करना चाहिए।
वी हैव टू रेंडर डिवोशनल सर्विस टू कृष्णा।
हमें कृष्ण भगवान को प्रेममय भक्ति, प्रेममय सेवा करनी चाहिए।
वी हैव टू रिमेन इन द एसोसिएशन ऑफ डिवोटीज।
हमें केवल भक्तों के संग में ही रहना चाहिए।
एंड दस डेवलप द टेस्ट टू गो बैक टू गॉड हेड।
और इस प्रकार हमें वह रस की प्राप्ति हो जो रस हमें भगवत धाम ले जाएगा।
गौर प्रेमानंदे हरि हरि वो। डज एनीबॉडी हैव एनी क्वेश्चन? यस सीताराम।
यह देखा जाता है कि हम भक्ति मार्ग में तब तक नहीं आ पाते जब तक कि हम पूर्ण रूप से शुद्ध ना हो गए हों। तो क्या यह बात ठीक है कि हमने पिछले जन्मों में यह सारे शुद्धिकरण के जो प्रक्रिया है यह पूर्ण रूप से कर लिया है, या यह केवल भगवान की कृपा है कि हम यहाँ भगवत मार्ग में आए हैं?
यस, इट इज अल्टीमेटली इट इज अ मैटर ऑफ अ गुड फॉर्चून।
वास्तविक रूप से यह हमारे भाग्य को ही दिखलाता है।
मे बी फ्रॉम आवर प्रीवियस लाइफ परफॉर्मिंग ऑल काइंड ऑफ ऑस्टेरिटीज एंड पेनेंसेज एंड क्वालिफाइंग आवरसेल्व्स टू कम टू दिस प्लेटफॉर्म।
हाँ, यह हो सकता है कि हमने पिछले जन्मों में शुद्धिकरण की प्रक्रिया को पूर्ण कर लिया है और इसी के कारण हम लोग भक्ति भगवान कृष्ण की भक्ति मार्ग में स्थित हो पाए हैं।
बट व्हेन अ डिवोटी आस्क्ड श्रील प्रभुपाद this question, Prabhupada said yes and I have created that good fortune for you.
Lekin aisa hi ek Prabhupada se ek bhakt ne prashn kiya tha to Prabhupada ne bola ki ha maine hi tumhara bhagya ko banaya hai.
We did not create our good fortune. Srila Prabhupada out of his causeless mercy has created this good fortune for us.
हमने स्वयं अपना भाग्य को नहीं बनाया है, लेकिन प्रभुपाद जी ने उनकी अहेतु की कृपा के कारण हमको भाग्यशाली बनाया है।
एंड नाउ लेट्स टेक फुल एडवांटेज ऑफ इट।
तो हमें इसका पूर्ण रूप से लाभ लेना चाहिए अभी।
एंड एज फार एज आवर बैकग्राउंड इज कंसर्न यू कैन सी व्हाट इट वाज लाइक, इजंट इट? एज फार एज आवर ओन बैकग्राउंड इज कंसर्न, what to speak of, you know, being purified, we can see how sinful we, most of us actually were.
तो हम अगर अपना पिछला जीवन देखें तो हमें यह पता चलेगा कि हमारा जीवन कितना पाप कृत्य से भरा हुआ था और हमें भक्ति का तो कुछ लेश मात्र भी लक्षण नहीं था।
That's why it is natural that we become thankful to Srila Prabhupada, grateful to Srila Prabhupada for creating this good fortune for us and take full advantage of it.
तो इसी के कारण प्रभुपाद जी की जो अहेतु की कृपा है उसका हमें सदा ऋणी होना चाहिए और जो उनकी कृपा के कारण हमें भक्ति मिली है उसका हमें पूर्ण रूप से लाभ उठाना चाहिए भक्ति में आने के उपरांत।
Isn't it? Any other question? Yes.
हरे कृष्ण महाराज। महाराज अपने दो दिन पहले जो बताए थे चार जो संप्रदाय के बारे में, तो चार संप्रदाय में कब भगवान ने उनको कैसे उपदेश दिया है? जैसे ब्रह्मा जी तो पहले आदि जीव है, तो उनको आदि ब्रह्म हृदय कभी उनको हृदय से उन्होंने उपदेश दिया था, तो इसे चार जो संप्रदाय में कैसे कैसे उपदेश दिया, कब दिया, विस्तार से बताएंगे।
व्हाट्स दिस क्वेश्चन?
द क्वेश्चन
मे बी कैन ट्रांसलेट इन इंग्लिश। Give him that.
Lord Krishna gave instructions to the founders of the four sampradayas, and we know that we know how Krishna gave the instructions to Brahmaji at the beginning of creation, but how did he give these instructions to the other heads of sampradayas like Lakshmi Devi and others, heads of other sampradayas?
Well, I don't know. I know only about how he gave it to Brahma. And it doesn't matter how others got.
तो इस बात का कोई विशेष महत्व नहीं है कि ब्रह्मा जी ने कैसे दूसरे कृष्ण ने कैसे दूसरे संप्रदायों में यह ज्ञान प्रकाशित किया। केवल ब्रह्मा जी को ही जानना हमारे लिए पूर्ण है.
डू यू वॉन्ट टू चेंज द संप्रदाय?
क्या आप अपना संप्रदाय बदलना चाहते हैं?
सो दैट्स व्हाई आई सेड इट्स नॉट इम्पोर्टेंट. जरूरी नहीं है.
इसके कारण ये ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है.
यस अर्चना.
हरे कृष्णा गुमार. समटाइम्स बाय बीइंग ईगर टू कम टू दिस लेवल ऑफ हियरिंग डूइंग सम सर्विस वी मे कमिट ऑफेंस टू अदर वैष्णव लाइक वांटेड क्विकली अचीव अ सर्टेन गोल. And sometime you mentioned that we should also be patient, and one day we'll see the spiritual world in front of us. So how should we find a proper balance and as a proper behavior to reach this goal?
The balance between?
Between like we want, by being eager, sometime we may commit some offenses.
Being eager?
Eager to... Saying like we are eager to reach a certain goal, to reach a certain level of consciousness, so we may also commit offense to others by our attitude.
Okay, and then?
So how to find this balance? Because also you say we should be patient, and one day the spiritual world will be open in front of us.
Okay.
तो प्रश्न यह है कि हमें देखते हैं कि श्रवण कीर्तन के स्तर पर आने के लिए हमें बहुत उत्सुक होना चाहिए. तो इस उत्सुकता में हम कभी कभी वैष्णव अपराध भी कर सकते हैं अपनी सेवा में. और दूसरा तरफ से यह बताया जाता है कि हमें बहुत धैर्यवान भी होना चाहिए. तो किस प्रकार हम इस दोनों वस्तुओं में एक प्रकार का बैलेंस बना सकते हैं कि हम लोग भक्ति में ठीक तरीके से प्रगति कर सके?
Well, if you commit any offense out of your eagerness to make advancement, to make spiritual advancement, a Vaishnava will not accept, Vaishnava will not take that as an offense.
अगर हम अपनी भक्ति में उत्सुकता के कारण, सेवा करने के कारण हमसे कोई अपराध हो जाए तो वैष्णव उसको अपराध रूप में स्वीकार नहीं करेगा.
For example, when Chaitanya Mahaprabhu was in Jagannath Puri, he was having the darshan of Lord Jagannath. And one woman climbed up on Mahaprabhu's back to have the darshan of Lord Jagannath. And Mahaprabhu's associates became very upset. But Mahaprabhu said, no, look at her eagerness to have the darshan of Lord Jagannath. Let her. So this is the mood of a Vaishnava.
तो जिस प्रकार हम लोग उदाहरण रूप से देख सकते हैं कि जगन्नाथपुरी में एक महिला, जब भगवान चैतन्य महाप्रभु भगवान जगन्नाथ जी का दर्शन कर रहे थे, तो एक महिला जगन्नाथ जी का दर्शन करने की उत्सुकता में उनके कंधे पर ही खड़ी हो गई. तो भगवान के जो सारे पार्षद थे वो उनको अत्यंत क्रोध आया और वह उस स्त्री को कुछ बोलने वाले थे, लेकिन महाप्रभु ने उन्हें बोला कि नहीं, तुम इन्हें कुछ नहीं बोल सकते, देखो ये कितनी आतुर है भगवान के दर्शन के लिए.
Alright, so devotees don't take offense. So become as eager as possible, even more eager than that to make spiritual advancement.
तो वैष्णव गण इस बात का, इसको अपराध रूप में नहीं देखते. तो हमें अत्यंत उत्सुक बनना चाहिए और उत्सुकता को बढ़ाना चाहिए कि हम अपने भक्ति मार्ग में प्रगति कर सके.
Also another example is once Srila Prabhupada, when Prabhupada was in 26 Second Avenue, just beginning of ISKCON, one of our god sisters was trying to hang a painting and driving a nail on the wall, and while doing that, Prabhupada was working, sitting, and it was just behind Srila Prabhupada. So she probably touched Srila Prabhupada, stepped onto Srila Prabhupada. And so she was very apologetic. But Prabhupada said, no, don't worry. For the sake of serving, you can even stand on my back.
तो इसका दूसरा उदाहरण मिलता है 26 सेकेंड एवेन्यू में, जब एक प्रभुपाद जी की शिष्य को एक तस्वीर दीवार पर टांगनी थी और उसी वक्त उसी जगह पर प्रभुपाद जी भी कुछ कार्य कर रहे थे,
तो यूएस ट्रांसलेटिंग
वह पुस्तक का अनुवाद कर रहे थे, तो वह उस कार्य टांगने के चलते उनका पैर प्रभुपाद जी के शरीर को छू गया। तो जब उनको इस बात की अनुभूति हुई तो उन्हें बहुत ग्लानी हुई और वह प्रभुपाद जी से क्षमा याचना कर रही थी, लेकिन प्रभुपाद जी ने बोला कि तुम्हें इसकी कोई जरूरत नहीं है, तुम अपना सेवा कार्य करने के लिए मेरे सर के ऊपर भी चढ़ सकते हो।
सो दिस इज हाउ अ डिवोटी फील्स व्हेन ही सीज दैट समवन इज ईगर टू सरेंडर सर्विस। यस चित्रंगदा
गुरु महाराज, आई रिमेम्बर व्हेन वन क्लास कृष्णार्जुन प्रभु वाज टॉकिंग अबाउट मैनेजमेंट एंड हाउ Sometimes, you know, you're away from chanting and reading, but you're involved in service, in the management side, and you said you have to work with your heart and not your mind. How do we do that? How do we work with our hearts?
तो महाराज, मेरा प्रश्न ये है कि कृष्ण अर्चन प्रभु एक भागवतम कक्षा में यह बोल रहे थे कि हमें कभी मंदिर में व्यवस्थापन या करने के लिए हमें जप से या श्रवण से हमें दूर रहना पड़ता है, तो हमें उस समय ऐसा दिल से काम नहीं करना चाहिए लेकिन दिमाग से करना चाहिए, और दिमाग से काम नहीं करना चाहिए दिल से करना चाहिए, तो इसमें हम कैसे इसमें समानता देख सकते हैं?
Heart means with love, head means with calculation. So when you are rendering service, don't calculate. If I render 5 rupees worth of service, I'll get 500 rupees back. Right? Rendering devotional service will be simply out of love for Krishna.
हृदय से कार्य करने का अर्थ है प्रेम से सेवा करना, और दिमाग से काम करने का अर्थ है कि गणनात्मक होना, कि जैसे हम 5 रुपए की सेवा करें तो हमें 5 रुपए का ही लाभ होना चाहिए,
500 रुपए
का लाभ होना चाहिए, तो इस प्रकार की मनोवृत्ति ठीक नहीं है।
जमुना प्रिया, यू हैव ए क्वेश्चन?
Guru Maharaj, one of my questions is related to yesterday's class when you were speaking about the different modes that we are always influenced by. And you said that in order to understand spiritual matter, we have to be free from the modes of ignorance and passion and be situated in goodness. And I understand, once I was hearing from Shivara Maharaj, that at different times we are influenced by a combination of the modes. So sometimes we're a bit in passion and ignorance and some goodness like this. So Maharaj, is the spiritual progress or the understanding we are getting of the spiritual matter based on how much, is it proportionate to how much we are in goodness, only that much? My question is that we're influenced by all the modes at different times. So how are we making progress?
Yeah. You see, devotional service spiritualizes everything. And devotional service means acting according to the instructions of the spiritual master.
जो भगवान की सेवा भक्तिमय सेवा है वो हर एक सेवा को, कुछ भी वस्तु हो उसको आध्यात्मिक बना देती है, और आध्यात्मिक सेवा करने का अर्थ है कि जो गुरु हैं, आध्यात्मिक गुरु हैं, उनके उपदेशों का पालन करना।
When you do that, then the passion or ignorance doesn't remain mundane passion and ignorance. It becomes spiritualizes.
तो जब हम ऐसे अपने गुरु की आज्ञा का पालन करते हैं तो जो जो सेवा में हम लोग रजोगुण या तमोगुण का को लगा रहे हैं तो वह साधारण तमोगुण या रजोगुण नहीं रह जाता, वह दिव्य हो जाता है।
से फॉर एग्जाम्पल, कृष्णा और अर्जुन स्टार्टेड टू फाइट द बैटल ऑफ कुरुक्षेत्र ड्यू टू द इंस्ट्रक्शन ऑफ कृष्ण।
जैसे कि हम देखते हैं अर्जुन ने भी जो महाभारत में युद्ध का प्रारंभ किया वो भगवान श्री कृष्ण के उपदेश के चलते ही किया.
नाउ फाइटिंग अ बैटल इन विच मोड इट इज इन द मोड ऑफ पैशन.
तो जो युद्ध करना है वह मूलभूत रूप से रजोगुण में ही है.
अर्जुन एक्चुअली वॉज इन द मोड ऑफ गुडनेस. He said, I'm not going to fight. I'll just become a mendicant and beg and maintain myself. But Krishna says, no, you fight.
तो अर्जुन युद्ध करने से पहले सतोगुण में ही स्थित थे. तो जब युद्ध के परीक्षा आई तो उन्होंने कहा कि नहीं, मैं तो युद्ध नहीं करना चाहता, मैं एक जंगल या वन में चला जाऊंगा और वहां पर भिक्षा प्राप्त करूंगा, उसी प्रकार का जीवन व्यतीत करूंगा, या युद्ध मुझसे नहीं होगा. लेकिन कृष्ण ने कहा कि नहीं, तुम्हें युद्ध करना ही होगा.
So when Arjuna is fighting the battle, although it's in the mode of passion, but it is spiritual.
तो हालांकि अर्जुन जो युद्ध कर रहे हैं वह रजोगुण में है, लेकिन वह भगवान की सेवा करने से दिव्य हो जाता है.
Then it is not passion, it is devotional service.
तो वह रजोगुण साधारण रजोगुण नहीं रह जाता, वह भगवान की प्रेममयी सेवा में परिवर्तित हो जाता है.
So devotional service, when you are rendering the service, it is not in any material mode, but it is in Vishuddha Sattva. It's in the spiritual mode.
तो अगर हम भगवान की सेवा कर रहे हैं तो वह किसी भी गुण में नहीं है, बल्कि इससे परे विशुद्ध सतो गुण में स्थित है.
For example, crying, to cry is in a mode of ignorance, right? But when a devotee cries for Krishna, is it in a mode of ignorance? No, it's devotional ecstasy.
जैसे कि रोना तो एक तमोगुणी भाव है, लेकिन क्या भगवान कृष्ण के लिए रोना भी तमोगुण में है? नहीं, वह भगवान कृष्ण की प्रेममयी सेवा का एक लक्षण है, एक भाव का लक्षण है.
Okay, how many more?
Maharaj, just in continuation with this, for my clarification further, to me, the understanding I'm getting then is that it depends on our mood behind the devotional service. So, i.e., the mode will therefore become spiritualized. Is that correct?
Yeah, I mean, whatever the mode may be, but if it is done out of love for Krishna or out of a devotion to Krishna, then it is not in the material platform anymore. It is in the absolute platform, spiritual platform.
So Maharaj, just another small question further on is that, say we are being affected by the modes and one may be doing the devotional service in a certain mode of maybe passion, for example. But if their mood is tinged not with the desire to please Krishna but to please themselves, i.e., you know, for self-aggrandizement, then what happens?
Yeah, then it is not devotional service. It's cheating in the name of devotional service.
तो अगर कोई रजोगुण का प्रश्न है कि अगर कोई रजोगुण में सेवा कर रहा है लेकिन उसमें एक स्वार्थ का भावना है तो वह कैसे साधारण, वह कैसे दिव्य रजोगुण है? तो महाराज ने उत्तर दिया कि वह सेवा नहीं है, वह तो स्वार्थ सिद्धि ही है.
Okay.
I promise, Maharaj, this is just the last part. Then will they, what is their hope? Will they further progress? How will they further progress?
If they're following a bona fide spiritual master, they'll progress.
तो अगर वह ऐसे स्वार्थ सिद्धि कर रहे हैं भक्ति में आकर भी, तो क्या उनकी भक्ति में बढ़ोतरी या प्रगति होगी? तो महाराज ने उत्तर दिया कि अगर वह अपने आध्यात्मिक गुरु की आज्ञा का पालन कर रहे हैं तो उनका भी प्रगति होगा.
Last question. It's already 9 o'clock.
Hare Krishna. Guru Maharaj, you said how Lord Chaitanya Mahaprabhu wonderfully gave the process where it is just the Siddhi directly. The question is, even in devotional service we see that so many devotees, they apparently get very special mercy, like when they render some very intimate or some nice service to Srila Prabhupada or like his representative, they get some very special mercy. well, in spite of not being, you know, able to perfectly execute certain things, so they are given the, the special mercy that they go back to Godhead, okay, within one lifetime, like we see in Hayagriva Prabhu's case. So the question is, what is the criterion to get that special mercy? When does one get that?
महाराज हम देखते हैं कि चैतन्य महाप्रभु ने इस धराधाम पर जब आए तो उन्होंने ये योग साधना न करने का हमको मार्ग दिखाया और केवल सिद्धि ही हमारे लिए एक साधन बन गया है. तो हम देखते हैं प्रभुपाद जी के उदाहरण से भी कि प्रभुपाद जी का थोड़ा सेवा करने के बाद जो प्रभुपाद जी के शिष्य थे जैसे कि हयग्रीवा प्रभु, तो उनको केवल प्रभुपाद जी का कुछ सेवा करने मात्र से ही प्रभुपाद जी का इतना अचिंत्य कृपा मिला कि वह केवल उस कृपा के चलते ही भगवत धाम जाने को योग्य बन गए. तो किस प्रकार से हम इस कृपा के पात्र बन सकते हैं?
जस्ट प्रे फॉर दैट, वेट फॉर द मर्सी.
तो इसकी प्रार्थना कीजिए भगवान से और कृपा मिलने के लिए इंतजार कीजिए.
बिकॉज इट्स यू नो कॉजलेस मर्सी मीन्स कॉजलेस, यू नो देयर इज नो कॉज, लाइक एंड दैट्स द थिंग, लाइक प्रभुपाद sometimes you know he will bestow his mercy upon somebody.
तो यह अहेतु की कृपा है और यह अहेतु इसका कोई कारण नहीं है. तो जब प्रभुपाद जी कभी किसी भी भक्त पर ऐसा कृपा कर देते थे, यह उनकी अहेतु की कृपा ही थी, इसका कुछ मुख्य रूप कारण नहीं.
I mean for that matter I can think of myself, like I came very late to Krishna consciousness and but Prabhupada just gave me so much mercy, where devotees were just waiting, dying to have 1 minute of Prabhupada's darshan. I had the good fortune of being with Srila Prabhupada 24 hours a day.
तो मैं भी स्वयं का उदाहरण दे सकता हूँ कि जैसे मैं प्रभुपाद जी की सेवा में बहुत समय के पश्चात आया, लेकिन इतने पश्चात आने के बाद भी प्रभुपाद जी ने मुझे स्वीकार किया और मुझे अपनी सेवा का मौका दिया. तो जब प्रभुपाद जी थे तब प्रभुपाद जी के दर्शन मात्र के लिए लोग इतने आतुर रहते थे कि उन्हें बहुत प्रतीक्षा करना पड़ता.
लोग नहीं, प्रभुपाद जी के शिष्य,
प्रभुपाद जी के शिष्य इतने आतुर थे कि उन्हें बहुत प्रतीक्षा करना पड़ता था. लेकिन प्रभुपाद जी के कृपा के कारण मुझे प्रभुपाद जी के इतनी नजदीकी सेवा करने का अवसर मिला.
एंड इफ आई थिंक बैक, यू नो आई डोंट नो व्हाई प्रभुपाद गेव मी दैट मर्सी.
तो मैं कभी ऐसा सोचता हूं कि क्यों मुझे ऐसी कृपा मिली, तो मुझे इस बात का पता नहीं कि प्रभुपाद जी ने मुझे ऐसे कृपा पात्र क्यों बनाया.
ओके,
हरे कृष्ण प्रभु. एज वी ऑल नो दैट लॉर्ड शिव इज ऑल्सो द टॉप मोस्ट डिवोटी ऑफ कृष्ण. सो
व्हाट्स दैट?
लॉर्ड शिव इज ऑल्सो द टॉप मोस्ट डिवोटी ऑफ कृष्ण. So is the Om Namah Shivaya Mahamantra is also effective to cross the material world?
I didn't get the last part. Lord Shiva is a devotee of Krishna, and then?
Lord Shiva is the topmost devotee of Krishna. So I want to ask that is the Om Namah Shivaya, which is the Mahamantra of Lord Shiva, is also the effective to cross the material world?
तो शिव जी भी भगवान कृष्ण के परम भक्त हैं. तो महाराज क्या ऐसा नहीं है कि शिवजी का भी कुछ ऐसा मंत्र है जिससे कि हम इस भौतिक संसार से मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं, भगवत धाम जा सकते हैं?
तुम अगर ओम ये शिवजी को, इफ यू वर्शिप लॉर्ड शिवा एंड चैंट हिज ग्लोरी एज ओम नमः शिवाय विद द अंडरस्टैंडिंग दैट ही इज अ डिवोटी ऑफ कृष्ण, देन यस यू विल गेट स्पिरिचुअल बेनिफिट.
तो अगर हम भगवान शिव की आराधना करें, ओम नमः शिवाय इसका जप करें, लेकिन इस भाव से कि भगवान शिव भगवान कृष्ण के एक
महान
शिष्य हैं, तो हम उस जप से भी करके भगवत धाम जा सकते हैं.
बट इफ वन थिंक्स दैट लॉर्ड शिवा इज द सुप्रीम एंड ही चैंट्स ओम नमः शिवाय, then he becomes a pakhandi, he becomes an atheist.
लेकिन अगर कोई इस यह भाव से ओम नमः शिवाय का जप करे कि शिवजी ही पूर्ण परमेश्वर भगवान है, तो वह एक पाखंडी कहलाएगा और उसका विनाश हो जाएगा.
we have to recognize that Lord Shiva is the Gunavatar of Krishna, is a devotee of Krishna. With that, it has to be understood. But sometimes we find that the demons are also worshipping Lord Shiva. Do they make spiritual benefit? Vanasur was a devotee of Lord Shiva. Right? Like, there are many demons like that. Why are they identified as demon? Demon means those who are opposed to, against the Lord. So we have to recognize the identity of Lord Shiva. And with that identity, with that recognition, we have to worship Him.
तो हमें इस बात को समझना चाहिए कि भगवान शिव कृष्ण के गुणावतार हैं। तो हम दूसरे रूप से देखें तो अन्य कई दैत्य और राक्षस भी भगवान शिवजी की पूजा करते हैं, लेकिन वह शिवजी की पूजा किस भाव में करते हैं और वह भगवान कृष्ण के एक महान भक्त के रूप में नहीं जाने जाते। तो ऐसे अन्य कई दैत्यगण हैं।
Okay, Hare Krishna, all glories to Srila Prabhupada. Oh, yeah, okay. Today is Srila Madhavendra Puri's Tirobhav Tithi. And also on this day, Madhavendra Puri in Navadvip took prasad in the house of Shachi Mata, Jagannath Mishra. And in Shantipur, where Shantipur er anushthan ta ki jonno and Advaita Acharya performs his Tirobhav Tithi. That's why in Shantipur there is a festival, and from Mayapur we go to Shantipur to celebrate that festival today.
तो आज माधवेंद्र जी का तिरुभाव तिथि है।
माधवेंद्र पुरी
का तिरुभाव तिथि है।
एंड लेट मी ऑल्सो से माधवेंद्र पुरी, हु इज माधवेंद्र पुरी? माधवेंद्र पुरी इज द स्पिरिचुअल मास्टर ऑफ ईश्वर पुरी, हु इज द स्पिरिचुअल मास्टर ऑफ श्री चैतन्य महाप्रभु।
माधवेंद्र पुरी कौन है? माधवेंद्र पुरी ईश्वर पुरी के गुरु, आध्यात्मिक गुरु हैं। ईश्वर पुरी जो चैतन्य महाप्रभु के गुरु हैं।
And then you can say, like Madhavendra Puri.
Madhavendra Puri का आज तिरुभाव दिवस है और आज ही के दिन सची माता के घर में माधवेंद्र पुरी ने प्रसाद ग्रहण किया था। तो अद्वैताचार्य ने आज ही के दिन उनको
तिरुभाव तिथि
को मनाया था आज ही के दिन।
श्रील माधवेंद्र पुरी प्रभुपाद की
जय।
गौर प्रेमानंदे श्रील अद्वैताचार्य प्रभु की, श्री शांतिपुर धाम की, श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवाशदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 राम, राम, राम।